ओम शांति। आज सुबह की मुरली बहुत सुंदर थी, है ना? बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान भी दिया, याद भी दिलाया हमें क्या पुरुषार्थ करना है। वो स्वमान अगर हम हमेशा याद रखते हैं, बहुत नशा और खुशी अपने जीवन में बना रहता है। लेकिन केवल सुनने तक सीमित न रख करके उसको अपनाने की जरूरत है। जैसे जन्मते हैं, जन्मते ही फिर जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ में आने लगता है कि मेरे माता पिता कौन है, परिवार क्या है, तो उसका एक प्रकार से स्वीकृति अंदर से हम स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ एक डीपली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। ऐसे ही जब हम ब्राह्मण बने, बाबा का ज्ञान लिया, 7 डेज कोर्स हो गया और ये स्वीकार किया कि भगवान इस धरा पर आए हैं और वो मेरे पिता हैं, ये सुन करके कहीं ना कहीं हमने स्वीकारा है, तो इसीलिए इस मार्ग पर चल पड़े हैं। लेकिन क्या वो स्मृति, वो स्वमान दिन भर रहता है, या फिर लौकिक जन्म, लौकिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी ही स्मृति रहती है? क्योंकि जितने गहराई से अपने आप को ब्राह्मण कुल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उतना हमें न केवल नशा और खुशी लेकिन शक्तिशाली भी हम बनते जाते हैं। नहीं तो केवल मुरली सुनते समय वो नशा रहा कि शिव बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट्स हैं, तो मुरली सुनने तक वो नशा रहा, लेकिन फिर दिन भर वो नहीं रहा, तो फिर वो कर्मों में वो दिखाई नहीं देता, कर्मों में वो परिवर्तन नहीं आता। तो इसीलिए हमारा ये पुनर्जन्म है। बाबा क्या कहते हैं, वर्षा जो देते हैं बाबा, कितने जन्मों का वर्षा देते हैं? 21 जन्मों का वर्षा। 21 जन्मों का हिसाब अगर लगाते हैं, सत्युग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, कितने हुए? 20 हुए। और 21वां जन्म कौन सा है? संगम युग का ये जीवन भी उस वर्षे के अंदर है। तो इस जन्म में भी मुझे वो वर्षा मिल रहा है। वो वर्षा हम पूरी तरह पाले उसके लिए हमें इस जीवन की जो हमें आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, पूरी तरह बदलना होगा। ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, फिर भी हम कलयुगी दुनिया का जो हमारे पहले ज्ञान से पहले का जो हमारा था, वो इतने गहराई से वो अपने आप के साथ हम लेकर के चलते हैं, वो अलग नहीं कर पाते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं मर जीवा जन्म है आपका, है ना? भले शरीर है, हर जन्म में क्या होता है, हर पुनर्जन्म में क्या होता है, एक शरीर को त्याग किया, दूसरे शरीर धारण किया। जब दूसरे शरीर धारण करते हैं, पहले जन्म का पूरी तरह मेमोरी वॉश आउट हो जाता है, याद कुछ भी नहीं रहता है पिछले जन्म का जब नया जन्म लेते हैं। लेकिन इस जन्म में पिछले जन्म करके तो बहुत सारे याद है, क्योंकि शरीर को हमने बदला नहीं है, शरीर तो वही है, लेकिन मरजीवा जन्म है हमारा। मरजीवा जन्म कैसे, हमने अपने स्मृति, अपने आइडेंटिफिकेशन, अपने जो पहचान है उसको हमने बदला है बस, क्योंकि शरीर वही है जिस कारण से वो सभी बातें याद रहती हैं, बचपन से लेकर के अब तक की बातें, और गहराई से वो अपनी यादों में रहता है। और ये बात चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि यहां रहते हुए सभी बातों को हमें भूलना है, भूलने के लिए एक नई याद हमें लानी पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर में डेटा होता है तो उसके ऊपर ओवरराइट करते दूसरे वाले सारा डिलीट होता है ना, जैसे कैसेट में भी एक नया गीत उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो पुराना डिलीट हो जाता है ना? ऐसे ही हमें एक नई यादें, नई स्मृति, नई सारा कुछ जब हम लेके आते हैं तो पुराना सब कुछ मिटता जाएगा, है ना। तो वो या नया कुछ लिखने के लिए हमारी सारी जो स्मृति है, हमारे अपने साथ जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो सारी बातें हमें चेंज करने की जरूरत है, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली बात, और ये नशा और खुशी इस बात का हमें है कि हम सभी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है दुनिया के हिसाब से, ब्राह्मण और अभी अलौकिक ब्राह्मण कितना अंतर है, अंतर है कि नहीं है। सर्वोच्च है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण छोटी है, विराट रूप में ब्राह्मण छोटी है ना, तो कितना श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण फिर देवता बनने जा रहे हैं, सर्वोच्च है। और बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण कुल स्थापित हो रहा है, और देवी देवताओं का कुल भी स्थापित हो रहा है। उसका फाउंडेशन क्या है, क्योंकि हर धर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आज बाबा ने बहुत सारे धर्मों को याद किया, मुसलमान धर्म को भी याद किया, क्रिश्चियन धर्म को भी याद किया, बौद्ध धर्म को भी याद किया। तो हर धर्म के अपनी अपनी कुछ विशेषताएं, तो या एक कुछ ऐसे गुण होता है जो महत्वपूर्ण होता है हर धर्म के, है ना। अगर हम बौद्ध धर्म को देखते हैं तो उसमें अहिंसा को महत्व दिया गया है, क्रिश्चियन धर्म को देखते हैं वहां क्षमा और स्नेह को ज्यादा महत्व दिया गया है, और मुसलमान धर्म को देखते हैं उसमें फेथ, विश्वास, आस्था, तो इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। और ब्राह्मण धर्म में फाउंडेशन क्या है हमारा, या महत्व किस बात की है, पवित्रता की है, है? पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन नहीं तो फिर और बाकी जो भी गुण है, बाकी सब जो भी शक्तियां हैं वो आ नहीं सकता। जब यज्ञ स्थापित हुआ, लोग आना शुरू किया, तो बहुत बड़ा हंगामा भी होना शुरू हो गया, और पवित्रता की बात को लेकर के हंगामा शुरू हो गया था। और बहुत सारे लोग बाबा के पास आए और उन्होंने बोला कि बाबा आपका आपकी सब ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात को थोड़ा सा ढीला करेंगे ना आप, तो आपकी संस्था बहुत वृद्धि को पाएगी, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे सुनने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि पवित्रता की बात को थोड़ा सा ढीला करें ना आप, उस बात के बारे में आप बातें ना करें पवित्रता के बारे में। लेकिन बाबा ने क्या बोला, नहीं, फाउंडेशन है ना हमारा, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो इमारतें कितना भी ऊपर खड़ा करे लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा वो, है ना। तो फाउंडेशन हमारा पवित्रता है, इसीलिए बाबा कहते हैं यू आर द होलीएस्ट, पवित्र आत्माएं। हम जो बाबा के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा पवित्र और सतोप्रधान आत्माएं हैं, और उस पवित्रता के कारण से अपरम अपार शक्ति है आत्माओं के अंदर, और जिस कारण से ना केवल इस समय लेकिन पूरे कालचक्र पे, पूरे 5000 साल में हम हीरोपाटधारी होते हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है, या फिर विज्ञान सत्ता है, अलग अलग सत्ताओं में जाकर के ब्राह्मण आत्माओं का हीरो पाठ होता है। वो किस कारण से, अभी के पवित्रता के फाउंडेशन के आधार से हम पूरे कल्प, ना केवल 21 जन्म हम वर्षा लेते हैं लेकिन बाद में भी द्वापर और कलयुग में भी हम हीरो पाठधारी होते हैं, है ना। तो इतनी ताकत है अभी के ज्ञान और अभी के योग में, इसलिए बाबा ने यह भी कहा ज्ञान बल और योग बल, इन दोनों बल के सामने कोई और बल टिकेगा ही नहीं, है ना। तो उन दो बलों को हमें बढ़ाने की जरूरत है, और ये पवित्रता के कारण से ही हम हाईएस्ट बनते हैं। हाईएस्ट भी हम क्यों बनते, ऊंचते ऊंच भी हम क्यों बनेंगे, पवित्रता के कारण से। दूसरे गुण हो लेकिन पवित्रता ना हो तो हम ऊंच नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देवी देवता बनने के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमोधर्मी, ये पांचों ही क्वालिफिकेशन जब होगा तब हम देवी देवता बनेंगे। लेकिन उसमें भी सर्व विकारों से मुक्त होना, पवित्रता, सर्व संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर धारण करना है, वो फाउंडेशन अभी से डालने की जरूरत है। जब बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता भी एक प्रकार की पवित्रता नहीं, बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, है ना। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, मनसा वाचा कर्मणा और समय स्वास संकल्प संबंध संपर्क और हर लेवल में वो पवित्रता शुद्धता लाने की जरूरत है। एक मुरली में बाबा ने 8 प्रकार की पवित्रता, 8 लेवल में पवित्रता की बात के जिक्र किया है बाबा ने। एक एक बात को हम देखते चलते हैं कि उसका अर्थ क्या है। अगर बाहर से अंदर की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले जो मोटे रूप से जो पवित्रता की बात अगर करे, बाबा ने कहा है ब्रह्मचर्य की पालना, वो पवित्रता, मतलब संबंध संपर्क में हमारा पवित्रता होना चाहिए। अगर संबंध संपर्क में पवित्रता नहीं है तो समस्या का क्या हो सकता है? प्रैक्टिकली अगर देखें, संबंध संपर्क में अगर पवित्रता नहीं है, ना केवल ब्रह्मचर्य की बात लेकिन संबंध संपर्क में भी अगर थोड़ा भी पवित्रता की कमी है तो क्या होगा? क्या होगा? देह भान के कारण से वो अपवित्रता है, और अपवित्रता के कारण से संबंध संपर्क में प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकता है? कड़वाहट आ जाएगी, अशांति होगी, और क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकती है। और वहां थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो सकता है, झुकाव हो सकता है, और फिर लगाव झुकाव होने के कारण से फिर उनके तरफदारी होगी, फिर दूसरों के साथ संबंध में कड़वाहट आएगी, है ना? तो एक आत्मा के प्रति हमारे झुकाव है कि दूसरों के तरफ प्रति मेरा फिर थोड़ा सा दूरी हो जाएगा, है ना? तो कहां भी थोड़ा भी अपवित्रता का अंश आया संबंध संपर्क में, वहां फिर लगाव झुकाव एक तरफ, और दूसरे तरफ फिर कड़वाहट, फिर अनबन, फिर संबंधों में खिटपिट, मनमुटाव, ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है ना? अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मुझ आत्मा का हर आत्मा के साथ मेरा संबंध पवित्र संबंध है। अगर कहीं ना कहीं संबंध में अपवित्रता है, ना केवल शारीरिक ये अपवित्रता की बात, मन में भी किसी के प्रति भी कुछ ऐसे आया, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारा संबंध में दिखाई देना शुरू होता है। और ये ईर्ष्या द्वेष भी एक प्रकार से अपवित्रता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसके टांग खींचना, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये भी अपवित्रता है ना, ये संबंधों में। तो सूक्ष्म लेवल में, क्योंकि बाबा के पास आए तो मोटे मोटे रूप से तो हमारा निकल जाता है, लेकिन सूक्ष्म लेवल में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। जब मेरा संबंध संपर्क में पवित्रता है तो फिर मेरा संबंध हर आत्मा के साथ अच्छा होगा। किसी के साथ मेरा अनबन, किसी के साथ मेरा झुकाव लगाव, या फिर बुद्धि भी उसके तरफ मेरा प्रति उनके प्रति मेरा खींच नहीं होगा, है ना? तो उस लेवल से हमारी पवित्रता होनी चाहिए। और वहां तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? संबंध संपर्क में मेरा पवित्रता 100% हो तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या होनी चाहिए? हाँ, ज्ञान तो है, अभ्यास कितना है? अभ्यास कितना है? हर आत्मा, हर व्यक्ति को आत्मा समझ करके क्या मैं उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करती हूं? जब हम आत्मा समझ करके व्यवहार करते हैं तो फिर वहां किसी भी प्रकार के समस्याएं आती नहीं है। देह भान में रहते हुए देह के संबंध के आधार से जब मैं व्यवहार में आती हूं तो वहां समस्याएं क्रिएट हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हर आत्मा के साथ, हर व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार आत्मा समझ करके मैं करूं, चाहे वो मेरे लौकिक परिवार वाले क्यों ना हो, लौकिक परिवार वाले हो या फिर अलौकिक परिवार वाले हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को आत्मा समझ करके व्यवहार में आते हैं, तो फिर उनके जो कमी कमजोरियां हैं वो नजर नहीं आता। नाते हुए भी हम उनको देखा अनदेखा कर लेते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से जब देख रहे हैं तो फिर वहां अपनापन है। जब अपनापन है तो अपने परिवार के सदस्य हैं, तो वहां कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव भावनाएं एक दूसरे के प्रति नहीं जा सकता, है ना। तो इसीलिए एक मिनट के लिए अपने आप को देखें और आपके संबंध संपर्क में पवित्रता कितना है अपने आप को देखें, और अपने आप को मार्क्स देंगे। जीरो से दस तक के बीच में, अगर बिल्कुल नहीं तो जीरो, अगर बहुत ज्यादा है तो दस। अपने आप को देखे और खुद को ये मार्क्स दे, जीरो से दस के बीच में मेरे संबंध संपर्क में पवित्रता कितना है। तो आज बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही है, तो जब तक हम अपने आप को रियलाइज नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते, चेक नहीं करते, तो चेंज नहीं कर पाते। तो आज इस सेशन में खुद को चेक करेंगे अलग अलग लेवल में। तो आप सभी ने अपने आप को मार्क्स दिया, सभी के पास नोटबुक पेन है, हाँ, स्टूडेंट लाइफ है ना, नोटबुक पेन जरूर रखें, क्योंकि पूरे भट्टी में बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस आप सभी को मिलेगा। अगर लिखेंगे नहीं तो याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो आप लिखेंगे, वो आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मार्क्स दे, जीरो से दस के बीच में संबंध संपर्क में पवित्रता कितना है। ब्रह्मा बाबा ने भी ये अभ्यास सबसे पहले किया था, है ना। अगर आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी है, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे जैसोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, फलाने आत्मा, आत्मा 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 की बात। तो आत्मिक दृष्टि हर व्यक्ति के प्रति, जब आत्मिक दृष्टि हमारा पक्का होगा, आत्मा समझ करके कर्म करते हैं, तो हमारा जो संबंध है वो बंधन ना बन करके संबंध सुखदायी संबंध रहेगा। तो इसलिए इस अभ्यास को हमें पक्का करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले ऐसे किसी को मैं कोर्स करा रही थी, कोई आए थे मेहमान, उनको थोड़ा सा, उनके परिवार में एक माता थी, उनके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तलाक तक बात आ गई थी, डिवोर्स तक। तो बहुत उनके मन के अंदर अपने हस्बैंड के प्रति बहुत सारा गुस्सा था, बहुत मतलब बहुत अनबन हो गया था उनके बीच में। मैं क्षमा की बात कर रही थी कि आप क्षमा करो उनको, तो शायद बहुत जब अनबन बन हो जाता है तो क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को। तो वो कह रही थी माता कि नहीं, क्षमा करना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, बर्ताव किया है, तो मैं उसको क्षमा नहीं कर, इस कंडीशन में, आज के दिन में मैं उसको क्षमा करने के कंडीशन में मैं नहीं हूं। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलिए फिर आप उसको आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं, वो व्यक्ति आत्मा है, जैसे आप एक ब्रकुटी के बीच में आत्मा चमक रही है, वो भी एक आत्मा है, आत्मिक दृष्टि से आप देख सकते हो। हाँ उसको प्रॉब्लम, उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा समझ सकती हूँ क्योंकि वो समझ है, मैं एक आत्मा हूँ वो भी एक आत्मा है, वो देखना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ वहीं से शुरुआत करिए फिर, है ना। कोई भी अगर अनबन है, अगर वहां से शुरुआत अगर करते हैं कि मैं आत्मा वो भी एक आत्मा है, वहां से शुरुआत करके फिर आगे बढ़ते हैं कि वो भी एक श्रेष्ठ आत्मा मैं भी एक श्रेष्ठ आत्मा, वो भी एक पवित्र आत्मा मैं एक पवित्र आत्मा, तो ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसे प्रकंपन हम फैलाते चले, देते चले उस आत्मा को, तो वो संबंध धीरे 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 अच्छा भी हो सकता है, है ना। तो इसीलिए संबंधों को सुखदायी बनाने के लिए फाउंडेशन है आत्मिक दृष्टि से देखना, तो इसीलिए संबंध संपर्क में पवित्रता बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट लेवल की जो पवित्रता है वो शारीरिक पवित्रता, शरीर की पवित्रता। माना बाबा ने नियम बनाए हुए हैं, स्नान करना है, क्योंकि शरीर की शुद्धि से, शरीर की शुद्धि का प्रभाव मन पर पड़ता है, है ना। परिसर को भी हम शुद्ध रखते हैं लेकिन साथ साथ शरीर को भी शुद्ध रखते हैं, हा? अगर टॉयलेट जाते हैं तो स्नान करना ये हमारा नियम है, वो है। और साथ साथ शरीर को शुद्ध रखने का एक और तरीका बाबा ने बताई हुई है, जो नियम बहुत ही सख्त है यहाँ बाबा के घर में, वो है कौन सा, भोजन, है ना। शुद्ध भोजन ग्रहण करना, वो भी एक शरीर को, मन को, मन के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है लेकिन शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो इसीलिए दोनों प्रकार के पवित्रता, शुद्धि और भोजन, जितना हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं उतना अच्छा है। कहीं ऐसे बाबा के बच्चे हैं, सालों सालों से बाबा के घर में आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब धारणाएं कर रहे हैं लेकिन भोजन की पवित्रता वो इतने 100% नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां ढीलापन है, वहां ढीलापन है तो क्या होगा, ढीलापन है तो क्या होगा, भोजन की ढीलापन है तो क्या होगा, एक तरफ तो आप इतने मेहनत कर रहे हो, इतना तपस्या कर रहे हो, रोज अमृत वेले उठ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, इतना तपस्या कर रहे हो, लेकिन दूसरे तरफ फिर किचड़ा डाल रहे हो। समझ में आया, एक यहां साफ है, साफ कर रहे हैं लेकिन बार बार किचड़ा गिर रहा है, साफ कर रहे फिर बार बार किचड़ा गिर रहा है, तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बार बार फिर अशुद्ध होता जा रहा है, उससे क्या होगा। क्योंकि एक तरफ मन को शुद्ध कर रहे हैं तपस्या करके, लेकिन भोजन अशुद्ध ग्रहण करके फिर मन को मैला कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं फिर उसके ऊपर पानी फिर रहा है, फिर है ना। तो इसीलिए जो परिवर्तन आत्मा के अंदर दिखाई देना चाहिए, इतने सालों से अगर पूछते हैं कि आप ज्ञान में कितने साल से, बहन जी में हम 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, 30 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जीवन में, क्योंकि नियमों में पक्के नहीं है, है ना। तो नियमों में पक्के नहीं है तो वो परिवर्तन भी दिखाई नहीं देगा, फिर विश्वास उड़ जाता है, बाबा के ज्ञान में इतने चल रहे हैं फिर भी दुख अशांति है, परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर विश्वास कम होना शुरू होता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वही भक्ति मार्ग के रास्ते पर चल पड़ते हैं, है ना। बाबा ने आज ये भी बोला, विधि से सिद्धि, है ना, विधि को फॉलो करेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे, उस अनुसार बाबा ने जो नियम बनाए हुए हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट तो 100%। विधि को फॉलो करेंगे तो सिद्धि तो 100% गारंटीड है। सिद्धि प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, विधि में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो इसीलिए ये नियम हमें जितना हो सके उतना पक्का रखे उतना अच्छा है। तो उसके लिए क्या स्मृति बार बार लाएं, क्या स्मृति बार बार लाएं, ये शरीर मुझ आत्मा का मंदिर है। मंदिर में कोई भी ऐसे चढ़ावा तो नहीं चढ़ता, भोग जब लगता है देवी देवताओं को बहुत शुद्ध घी पर बहुत पवित्रता से बनाते हैं, है ना, ऐसे अशुद्ध चीजें देवी देवताओं को भोग में नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये मेरा मंदिर है, बाबा ने इस मंदिर को मैं दिया हुआ है, ट्रस्टी होकर के मैं इसको संभाल रही हूं और इसको अच्छी तरह मुझे संभालना भी है ना। ऐसे नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं कि सेवा में इतने लगे हुए हैं शरीर की संभाल नहीं हो रहा है, फिर शरीर छोड़ने तक नौबत आ जाती है। बाबा ने कहा ये भी अज्ञानता है। ज्ञानी तो आत्मा, वो आत्मा है जो शरीर का ज्ञान भी उसके पास पूरी तरह है लेकिन अटैचमेंट नहीं है शरीर के साथ। लेकिन क्या, किस भावना से शरीर को हम संभाल रहे हैं, ये मेरा मंदिर है, इस मंदिर में मैं मूर्ति हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर मैं पुरुषार्थ कर पा रही हूं, देवी देवता बनने के लिए लायक बन पा रही हूं। अगर ये शरीर छूट गया तो फिर से मुझे स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब तक ये शरीर अच्छा है तब तक मैं अच्छी तरह सेवा और पुरुषार्थ कर सकती हूं। तो इसीलिए ये सारे नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को चेक करके आपको नंबर, अपने आप को नंबर देना 0 से 10 के बीच में, शारीरिक पवित्रता कितना है और कितना आपको बढ़ाना है, ठीक है। और शारीरिक पवित्रता में ये भी आता है सिंपल, सिंपल लिविंग, ऐसा नहीं, हाँ सेंटर में रहने वाले भाई बहनों का बात अलग है लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी बाबा ने क्या नियम दिया हुआ है, कैसे ड्रेस पहनना है, मर्यादित वस्त्र भी शारीरिक पवित्रता में आएगा, है ना। भले आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं लेकिन बाबा के बच्चे हैं, माना हमारा जो वस्त्र है भले लौकिक में है, लौकिक में आना जाना भी होता है लेकिन हमारे जो वस्त्र है वहां भी मर्यादित। ऐसा नहीं कि बीके में जाकर के ऐसे करते हैं, ऐसा लेबल ना आए, है ना। तो वो भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। देवी देवताओं को देखते हैं उनका वस्त्र मर्यादित, बहुत ही आकर्षित भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे गंदे वंदे कुछ भी ऐसे कपड़े पहन लिया, नहीं, बहुत ही रॉयल लेकिन मर्यादित, बहुत सुंदर भी लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा के बच्चे बने हैं लौकिक दुनिया में है लेकिन ऐसे वैसे सिंपल रहना है, ऐसे वैसे कुछ भी कपड़े पहने, नहीं, बाबा कहते रॉयल भी रहना है, अच्छा भी लगना चाहिए लेकिन फिर मर्यादित भी रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए। और तीसरा जो है पवित्रता, कर्म, हमारा हर कर्म में पवित्रता, हर कर्म में पवित्रता कैसे, कहीं भी जैसे हेरा फेरी, थोड़ा बहुत भी डिसऑनेस्टी होता है, ईमानदारी नहीं होती है, इस इसकी बात को उसको जाकर के सुनाओ, उसके बाद को ये बात सुनाओ, तो हेरा फेरी जो शुद्ध नहीं होते हैं अंदर से, बहुत सारे गफले करते हैं, चाहे वो धन की हेरा फेरी, चाहे वो बातों की हेरा फेरी, संबंधों की हेरा फेरी, अपने अपनी खुद की बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे कुछ हेरा फेरी जो करते हैं, वो कर्मों में अशुद्धता माना जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। तो हेरा फेरी करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा के दिल पर अगर चढ़ना है तो हमें साफ दिल रखना है, है ना। और ईमानदारी से जो कमाए हुए जो धन है वो सुखदाई है। बेईमानदारी से अगर हम धन कमाते हैं, भले ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उससे हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले थोड़ा ही है, लेकिन सुख चैन की जीवन हमें जरूरत होता है। इसलिए कर्मों में, हर लेवल में, कर्मों में भी, धन के लेवल में, संबंधों के लेवल में, हर लेवल में कोई भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं, लेकिन शुद्ध दिल से, शुद्ध भावना से हर बात को जब हम करते हैं तो वहां साहेब राजी हो जाते हैं, है ना। कर्मों में शुद्धता, उसमें भी मार्क्स दे दीजिए अपने आप को। कर्मों में पवित्रता कितना है अपने में, दिल की सफाई। झूठ बोलना वो भी अपवित्रता है ना। थोड़ा भी छिपाना, थोड़ा भी, बाबा कहते हैं बिना पूछे भी खा लेना, वो भी एक रॉयल प्रकार की एक विकार है, है ना। तो वो उस लेवल से वो शुद्धता, कर्मों में शुद्धता। किसी की चीज पड़ी है, अपनी ही है, चलो ले लिया, है ना, तो नहीं, उस लेवल में भी वो पवित्रता होने की जरूरत है। और चौथा लेवल, हमारे शब्दों में पवित्रता। शब्दों में पवित्रता कैसे, वाचा में पवित्रता। अच्छे बोल बोलना है, जैसे बाबा ने, बाबा जब शरीर छोड़ने से पहले 3 शब्द बोले थे, है ना, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। निर्विकारी हमें कर्मों में रहना है, निरहंकारी हमें वाचा अपने शब्दों में, क्योंकि शब्दों से पता चलता है, उनके बातों से पता चलता है इस आत्मा के अंदर कितना अहंकार है या निरहंकारी है, है ना। तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो इसीलिए मेरे वाचा, वाचा में पवित्रता है। धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो। पट 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 कुछ भी बोल दिया, गुस्सा आया, बोल दिया, बोल देने के बाद फिर पछताना, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, है ना। उस पर पूरा कंट्रोल, अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल, जो बोलना है वही बोलू, है ना, तोल मोल करके बोलना है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठा बोलो, धीरे बोलो, तोल मोल करके बोलो, और हर शब्द से ज्ञान ही निकले, या फिर दूसरों के उमंग उत्साह बढ़ाने के बोल बोले, दूसरों को आगे बढ़ाने की बोल बोले, दूसरों को नीचे गिराने के बोल ना बोले, है ना। तो बोल में पवित्रता कितना है अपने अंदर, निरहंकारिता। गाली तो बिल्कुल नहीं देना है। ब्राह्मण बच्चे गाली देते हैं, नहीं देते हैं। बाबा कहते बुद्धू बोलना भी गाली है, है ना। तो वो भी अपशब्द कुछ भी मुख से निकलना ही नहीं है अपशब्द, क्योंकि मजाक मजाक में कई बार ब्राह्मण बच्चे मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप कौन हैं, आपके शब्दों में वो ताकत है, सिद्ध होने की ताकत है। बाबा के बच्चों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, हर बोल में इतनी शक्ति है, अगर जो भी बोले वो सिद्ध हो जाता है। कहीं बार अपनी शक्ति को हम मापते नहीं हैं, खुद की शक्ति के बारे में खुद को पता नहीं होता है, कुछ भी बोल लेते हैं और वो सिद्ध हो ही जाता है। नहीं है ना, अपने आप को बहुत कम नहीं समझना, साधारण नहीं समझना, है ना। तो इसीलिए जो भी बोलेंगे सोच समझ करके वरदानी बोल ही निकले हर आत्मा के प्रति। ऐसे मजाक में भी अपशब्द बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ये ध्यान रखना चाहिए। जब दादियां ना, जब यज्ञ में दादियां छोटे छोटे आए बाबा के पास और ब्रह्मा बाबा को हमेशा पिता के रूप में देखते थे, तो कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे, खास करके निर्मल शांता दादी या ब्रिजेंद्र दादी। निर्मल शांता दादी तो लौकिक बेटी थी और ब्रिजेंद्र दादी तो लौकिक बहू थे, तो कभी कभी ऐसे हंसी मजाक में ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसे कुछ भी बोल लेते थे। लेकिन मम्मा हमेशा गंभीर रहते थे, कभी नहीं हंसी मजाक बाबा के सामने उन्होंने किया है। अगर अगर दादियां दूसरी दादियां भी कर रहे हैं हंसी मजाक बाबा के सामने, लेकिन बाद में मम्मा उन दादियों को बुला करके उनको समझाते थे, आपको पता है ये कौन है, आप भूल नहीं जाना ये कौन है। क्योंकि कहीं बार साधारणता में आ जाते हैं ना, तो कुछ भी हम हंसी मजाक में बोल लेते हैं, कर लेते हैं, वो भी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना। क्योंकि मम्मा को ये हमेशा स्मृति रहती थी, मैं कौन और सामने वाले हर आत्मा कौन है, हमेशा वो स्मृति स्वरूप होते थे। इसके कारण से कभी भी साधारणता से एक दूसरे को कभी नहीं देखा मम्मा ने, है ना। तो इसलिए हमें भी कभी ये साधारणता में नहीं आना है कि भले वो साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा है लेकिन वो व्यक्ति साधारण नहीं है। तो हमेशा वो स्मृति रहेंगे, तो ये ऐसे अपशब्द अपने से कभी नहीं निकलेगा। हमारे शब्दों में भी रॉयल्टी होनी चाहिए ना, देवी देवता बनना है ना केवल व्यवहार में लेकिन फिर बोल में भी वो रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो खुद को चेक करके नंबर दीजिए, खुद के बोल में कितनी पवित्रता है। और नेक्स्ट पांचवा मनसा, मन में पवित्रता। मन में पवित्रता की कमी होती तो क्या होगा, व्यर्थ चलता है, हलचल में आएंगे, नेगेटिव भी चलता है, विकार के वशीभूत हो जाते हैं। भले कर्मों में वो विकार नहीं दिखाई देता लेकिन मन में बहुत सारे विकारों के संकल्प विकल्प चलते हैं। गुस्सा, मतलब पांचों ही विकार आ गया उसमें, सातों ही विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन सब प्रकार के विचार, है ना। कोई भी ये विचार विकारों के विचार आए, माना मनसा में पवित्रता की कमी है ना। मोटे मोटे रूप से तो निकल जाएगा लेकिन सूक्ष्म रूप से जो विकार छिपे हुए हैं उसको हमें ढूंढने की जरूरत है। भले काम क्रोध लोभ मोह, मोह थोड़ा बहुत होगा, काम क्रोध लोभ तो मोटे रूप से निकल जाता है, है ना, थोड़ा बहुत मोह होगा, थोड़ा बहुत अहंकार को निकालना बहुत मुश्किल है, है ना। खुद को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, हाँ मेरे अंदर वो अहंकार है, जब मुझे महसूस होगा तब जाकर के वो निकलेगा। और थोड़ा बहुत ईर्ष्या द्वेष ये सब छोटी छोटी चीजें ना, तो वो सारे ढूंढ ढूंढ करके उनको निकालने की जरूरत है। किसी के प्रति भी ऐसे विचार चला, वहां ही काट देना चाहिए, वहां ही उसको भस्म करके उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? मन में पवित्रता बढ़े, पवित्रता की शक्ति बढ़े, उसके लिए क्या करना है? सोच को बदलना है, मनसा को शक्तिशाली, मनसा के मन के अंदर पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वमान वो लेवे, एक ऊंचा स्वमान, जो भी मेरे वीकनेस है उसके विपरीत, अगर मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर अपवित्रता दिखाई दे रहा है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। परम पवित्र आत्मा किस हिसाब से? अभी तो वो परम पवित्रता दिखाई नहीं दे रहा है आत्मा के अंदर, लेकिन मैं स्वमान ले रही हूं, किस आधार से ले रही हूं, किस आधार से ले रहे हैं? ज्ञान के आधार से। आत्मा का जो ओरिजिनल स्थिति है, परम धाम में जब हम थे तो हमारी स्थिति कैसी थी? परम पवित्र स्थिति थी, है ना। हम हर आत्मा का ओरिजिनल स्थिति वो है, भले अभी अपवित्रता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्थिति परम पवित्रता है। तो जब मैं बार बार उसको याद करती हूं, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, तो फिर वहां तक मैं पहुंचने के पुरुषार्थ कर रही हूं, है ना। मेरा लक्ष्य वो है, मेरी स्थिति वो है अंदर, लेकिन वो अभी वर्तमान समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार वो पुरुषार्थ करते, बाबा से वो शक्ति लेते हुए फिर पवित्रता को मैं बढ़ा रही हूं। अलग अलग स्वमान आप लेते हुए आत्मा के अंदर, मन के अंदर पवित्रता की शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को मार्क्स देंगे, मन में पवित्रता कितना है, और नेक्स्ट लेवल और भी सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल की पवित्रता है दृष्टि, है ना। बाबा यहां यज्ञ में दृष्टि के महत्व बहुत बताते हैं, दृष्टि से हम शक्तियों का संचार करते हैं, दादियों से बड़ों से जब मिलते हैं दृष्टि लेते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहते आप पांव छुओ, नमस्कार करो, झुको, नहीं, दृष्टि लो। बाबा से भी मिलते थे, अव्यक्त बाबा से भी मिलते थे, दृष्टि लेते थे, दृष्टि से वो शक्ति हम महसूस करते थे, है ना। दृष्टि में इतनी शक्ति है, लेकिन अगर उसको हम ऐसे ही बहने दे देते हैं, नकारात्मकता के तरफ बहना शुरू होता है, बहुत जल्दी आत्मा की शक्ति नष्ट होना शुरू होता है, बहुत जल्दी, कर्मों से भी नहीं, बोल से भी नहीं, लेकिन दृष्टि से आत्मा की शक्ति बहुत जल्दी नष्ट होता है। इसलिए लौकिक में भी ये प्रथा है ना, दृष्टि निकालने की, दूसरों की नजर लग गई, नजर निकालो, गलत नजर लग गया, ये सब क्यों ये प्रथा है? क्योंकि किसी की गलत नजर लगा तो फिर वो नेगेटिव है ना, तो वो नजर उतारना पड़ता है, क्योंकि नजर से, दृष्टि से बहुत शक्तियों का संचार होता है, और वो भी ब्राह्मणों की दृष्टि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए उसको बचा के रखना है। और बाबा क्या कहते हैं, कभी भी किसी में आंख नहीं डूबना चाहिए। आंख डूबना माना, आंख डूबना माना आकर्षित हो जाना, हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, आकर्षित हो। एक होता है अप्रिशिएट करना, जैसे सुंदर डेकोरेशन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है पुरुषार्थ के, बहुत अप्रिशिएट करना अच्छा है, मतलब अलग बात है, लेकिन फिर अच्छा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, चाहने की इच्छा से हम जब देखते हैं ना, वो गलत है। इसके पास ये चीज है, मुझे भी चाहिए, इसके पास ये है, वो मुझे चाहिए, तो इस दृष्टि से देखना ये रॉन्ग हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करना अलग बात है, बहुत सुंदर कोई चीज है, किसी ने बहुत सुंदर अच्छा बनाया है, अप्रिशिएट करना अलग बात है, लेकिन चाहने की दृष्टि से देखना वो रॉन्ग है ना। तो वो आंख कब नहीं डूबता, कब नहीं डूबता, क्या पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए? इच्छाएं, संतुष्टता। अगर अपने अंदर संतुष्टता है तो कुछ चाहना नहीं रहता है। जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है, भरपूरता की अनुभूति जब होगी ना, आंख डूबेगा नहीं किसी के अंदर, और हमेशा वो आंख ऊपर ही रहेगा। जैसे देवी देवताओं के दृष्टि देखा है, बहुत ही निराला, बहुत ही न्यारा, देखते हुए नहीं देख रहे हैं। गुलजार दादी को सबने देखा होगा, किन किनों ने गुलजार दादी को देखा है? बहुत कम लोगों ने। गुलजार दादी अगर बात भी करते थे, वो भले कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऊपर ही है, जैसे ना है दुनिया में, लेकिन दुनिया से भिन्न है, कहीं डूबा हुआ नहीं है। ऐसे हमारे नजर भी, हमारी दृष्टि भी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं अटका हुआ नहीं है, चाहना नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। तो ऐसी जब स्थिति होगी तो अपनी दृष्टि में वो ताकत, तब हम नजर से निहाल कर सकते दूसरों की। आगे चल करके ये सेवा बढ़ेगी, कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएगा, लेकिन नजर से निहाल, एक दृष्टि से आत्मा को इतनी भरपूरता मिलेगी, इतनी संतुष्टता मिलेगी, वो एक नजर से, है ना। इसलिए हमें वो तैयारी करनी है, क्या मैं आत्मा इतना संतुष्ट हूं, आत्मा के अंदर वो शक्ति है, मेरी दृष्टि में भी वो शक्ति दिखाई देगा, आत्मा को अनुभूति होगी, है ना। तो इसलिए दृष्टि में पवित्रता, आंख डूबे नहीं कहीं, उसके लिए मार्क्स कितना देंगे आप अपने आप को देख लीजिए। और नेक्स्ट सातवां लेवल, वृत्ति, वृत्तियों में पवित्रता। वृत्ति में पवित्रता माना, विचार अलग है, वृत्ति अलग है। वृत्ति में वो बहुत ही गहरा है वृत्ति, हम्म, हाँ, सोच सोच करके स्थिति बनी, लेकिन उससे भी गहरा ये है कि अपने आप को गहराई से क्या समझते हैं, है ना। एक एक एटीट्यूड बन जाता है, एक अंदर से वो एक वृत्ति बन जाती है, एक अंदर होता है। अपने आप को बहुत बड़ा समझते तो हर कर्म में, हर बोल में, हर इसमें वो आना शुरू होता है। उसी के आधार से, उसी के इर्द गिर्द हम सोचते हैं, हमारे सोच भी उसके इर्द गिर्द भी होगा। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूं, वो अंदर मेरा, ये अंदर गहराई से मेरा अंदर है, मैं अच्छा, बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, या मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, तो ये अंदर से मेरा अंदर है। तो फिर मेरे हर बोल में, हर व्यवहार में, हर, मतलब भले मैं भाषण नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार में भी, वो कहीं ना कहीं वो अहंकार जो सूक्ष्म रूप से जो मैं समझती हूँ अपने आप को, तो वो दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वो वृत्ति के आधार से, उसी के वृत्त में, वृत्त माना सर्कल, है ना, उसी के इर्द गिर्द मैं सोचती हूँ। समझ में आया? उसी के इर्द गिर्द सोचती हूँ, तो इसलिए हर व्यवहार में, हर कर्म में, हर बोल में वो दिखाई देना शुरू होता है। अगर मैं गहराई से, मैं अंदर आत्मा में, मैं स्वीकार करती हूँ मैं भगवान की बच्ची हूँ, तो वही बात दिखाई दे लोगों को, है ना। उसे, क्योंकि उसी इर्द गिर्द मैं सोचती हूँ, कोई भी समस्या आया, कोई भी बात आई, तो मैं उसी के आधार से मैं सोच रही हूँ मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, तो उसके आधार से मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए वो वृत्ति में अगर पॉजिटिव कुछ आया तो हर बात में पॉजिटिविटी दिखाई देगा। अगर वृत्ति में कोई भी ऐसे सूक्ष्म रूप में नेगेटिव बात को लेकर के बैठे हुए हैं, या देह भान के आधार से मैं लेकर के बैठी हूँ कुछ बात को, तो फिर हर बात में वो बात आएगी, वृत्ति आएगी, है ना। तो वो वृत्ति अगर शुद्ध है, बाबा ने जो दिया है वहां, उसमें मेरापन नहीं लेकिन बाबा जुड़ा हुआ है उस वृत्ति में भी, तो फिर हर बात में शुद्धि आएगी। ये गहरा है, तो अपने आप को चेक कर रहा, आराम से बैठ करके कभी, आपके वृत्ति में क्या है जिस आधार से आप हर व्यवहार करते हो, हर बोल में आते हो, क्या है वो, जितना शुद्ध होता जाएगा और बातें बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। पवित्रता धारण करना बहुत इजी है अगर वृत्ति में पवित्रता एक बार आ गई है, तो आपने आपको मार्क्स देना कि वृत्ति में आपकी पवित्रता क्या है, कितना है। और लास्ट आठवां लेवल है, बहुत सूक्ष्म लेवल, वो है आज बाबा ने जो बोला था वरदानों में, सपनों में पवित्रता, है ना। कई बार पता नहीं चलता है कि सपना, ऐसे गंदे सपना आ जाते हैं, नेगेटिव सपना, व्यर्थ ऐसे बिना कारण कुछ ऐसे सपने आते हैं, वो कहां से आ रहे हैं, है ना। वो उस दिन के कर्म के कारण से नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार में है वो बात, वो स्वप्नों में दिखाई दे रहा है। तो जितना जितना आत्मा की पवित्रता की लेवल बढ़ता जाएगा, सपनों में शुद्धि, बहुत ही अच्छे सपने, सुखदायी सपने, बहुत ही अलौकिक सपने आने लगते हैं, है ना। इसलिए स्वप्न भी आते हैं ना कोई कारण होता है, ऐसे देखा अनदेखा नहीं करे, तो वो थोड़ा सा एनालाइज करना, क्यों आया है, किस लिए आया है, कौन सा अपना संस्कार ऐसा है जो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिस कारण से वो सपना आया है, तो वो देख करके फिर अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। तो अगर स्वप्न, शुद्ध स्वप्न आना शुरू हुआ, तो फिर आत्मा परम पवित्र होते जा रही है। ये चिन्ह है अपना, है ना। तो इसलिए अपने आप को चेक करके ऑटो ही लेवल में कितना खुद के अंदर वो पवित्रता है, उसको हम बढ़ाते चलते हैं, तो फिर हम परम पवित्र आत्मा बन सकते हैं। और उस पवित्रता के आधार से फिर और दूसरे गुण और शक्तियां आत्मा के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।